मंगलकरण वीतराग विख्यान नमो ताहि जाति भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। हम सभी लोग हमेशा एक ही भावना रखते हैं कि अपने जीवन को कैसे अच्छे से जिए, हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाए, और इस भावना के पूरे करने के लिए हमने पिछले कई दिनों से यह प्रयत्न शुरू किया है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करें। जीवन अच्छा बनता है दृष्टि की निर्मलता से, आत्मज्ञान से और सदाचरण से। हम जीवन में दृष्टि की निर्मलता प्राप्त कर सकें इसके लिए जरूरी है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारा श्रद्धान हो, हमारा विश्वास हो। हम संसार में बहुत विश्वास से अपना जीवन जीते हैं, पर अपना कल्याण करने के लिए जो मोक्ष मार्ग है उस पर चलते समय भी अपना विश्वास ऐसा ही दृढ़ होना चाहिए जैसा कि संसार में होता है। जितना निर्भय और निशंक होकर के भगवान के बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे, उनके द्वारा बताए गए आचरण का पालन करेंगे, वैसा हमारे जीवन में धीरे धीरे जो बुराइयां हैं वो हटती जाएंगी और हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। लेकिन जरूरी है कि हमारे भीतर में सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान हो, उनके द्वारा कहे गए ज्ञान के प्रति, तत्व के प्रति अपना दृढ़ श्रद्धान हो। अपन मोक्ष के मार्ग पर चलते समय भयभीत ना हो, उसमें कोई शंका ना करें, डाउट ना करें, पता नहीं मैं चलूं और पहुंचूंगा कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है, क्या पता भगवान का कहा हुआ सब सही है कि नहीं है, ऐसा कोई संदेह अपने भीतर ना हो। एक बार संसार की ही घटना है, एक बहुत बड़ा वनस्पति शास्त्री था, बॉटनिस्ट, वो बहुत वनस्पतियों के बारे में खोजबीन करता था, नए नए प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां ढूंढने में लगा रहता था। उसे मालूम पड़ा कि एक बहुत दुर्लभ वनस्पति मिल सकती है यदि थोड़ा प्रयास करे तो। वो अपने गांव से 2-5 किलोमीटर दूर एक 400 फीट नीचे घाटी में वो वनस्पति प्राप्त होगी। अब पहले ऐसा तो था नहीं कि सीधे क्रेन से और हम उतरें और लेकर के आ जाएं वनस्पति, या ऊपर से कोई उपाय कर लें उसको लाने का। उसने जाकर के देखा कि खाई तो बहुत गहरी है और वास्तव में वहां पर वनस्पति जो हम चाहते हैं वो भी है, पर वहां तक पहुंचा कैसे जाए वनस्पति को लेने के लिए। उसके मन में एक आइडिया आया। उसका एक छोटा सा बच्चा था 8-10 साल का, उसको आइडिया ये आया। वो बच्चे को लेकर के उस घाटी के निकट पहुंचा और उसने कहा कि बेटे मैं तुम्हारे कमर में रस्सी बांध देता हूं और धीरे धीरे तुम्हें नीचे घाटी में उतार देता हूं, फिर तुम वनस्पति वहां से ले लेना और जब तुम कहोगे कि मैंने ले ली तो मैं ऊपर खींच लूंगा, सबसे बढ़िया काम। तो बच्चा भी तैयार हो गया और पिता ने उसके कमर में रस्सी बांधी और धीरे धीरे घाटी में उसको 400 फीट नीचे उतार दिया। बच्चा बिल्कुल खुशी के साथ नीचे उतरता गया और हाथ में जब उसके वो वनस्पति आ गई तो उसने कहा कि अब मुझे खींच लो। पिता ने धीरे धीरे करके उसको ऊपर खींचा। पिता बहुत चिंतित हैं, पसीने पसीने हो गए वो। लेकिन जब बेटा ऊपर आया तब बेटे के चेहरे पर मुस्कान थी, कोई घबराहट नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको पिता की तरफ देख करके कि पिता इतने चिंतित हैं और बिल्कुल पसीना पसीना हो रहे हैं। तो पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों थे, आप तो वनस्पति चाहते थे, वो मैं लेके आ गया, अब तो आपको खुश होना चाहिए। तो पिता अपनी चिंता से जितने चिंतित थे उतने बेटे की मुस्कान देख करके चिंतित हो गए कि तुम तो बहुत प्रसन्न हो और इतने नीचे घाटी में तुम्हें जरा भी भय नहीं लगा, नीचे 400 फीट जाकर के तुम्हें जरा भी अपने जीवन के बारे में डर नहीं हुआ। बेटे ने कहा कि मुझे डरने की क्या आवश्यकता थी, मुझे आपने संभाल रखा था इसलिए मुझे चिंता भी नहीं थी। मेरे जिस डोरी से मैं नीचे भेजा गया था वो डोरी आपके हाथ में थी इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। देखिएगा बहुत छोटी सी चीज है, पिता डर रहे हैं कि बेटे को इतने नीचे भेज दिया है कहीं रस्सी टूट ना जाए, मैं खींच पाऊंगा कि नहीं, इसके लिए चिंतित हैं, भयभीत हैं। लेकिन बेटा प्रसन्न है कि मेरा मैं उतारा गया हूं तो मेरी पूरी संभाल मेरे हाथ में उसके मेरे कमर में बंधी हुई रस्सी की डोर पिता के हाथ में है और पिता पर उससे विश्वास है कि पिता के हाथ से कैसे डोर छूट सकती है, कैसे मैं गिर सकता हूं। ऐसे ही अपने जीवन में जैसे कि संसार में अपन इतना विश्वास कर लेते हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर चलते हुए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपने मन में ऐसा ही विश्वास है क्या, उनके प्रति ऐसा ही सहारे का भाव, सहारे का एहसास अपने जीवन में है क्या कि कुछ नहीं होगा, मैं तो प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य करूं, मुझे तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, उनका ही सहारा है। तब अपने जीवन में कोई भय या चिंता या शंका सवाल ही नहीं उठता। अपनी दृष्टि निर्मल होकर के अपन मोक्ष मार्ग पर ठीक ठीक बढ़ करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन संसार के मार्ग में भले ही अपने मन में कोई संदेह नहीं होता पर मोक्ष के मार्ग में संदेह हो जाता। असल में बहुत सारे रास्ते हैं, का पथे पथि दुखा नाम का पथस्ते सम्मति असंप्रक्ति रणुत कीर्ति रमुणा दृष्टि रुच्यते। लेकिन उन सब रास्तों के बीच में 363 मतों के बीच में हमारे भीतर उनमें क्या सच है इस बात का विवेक अगर है तो हमारी दृष्टि निर्मल होने के साथ साथ गुणों से संपन्न होकर हमारे जीवन को अच्छा बना देगी। लेकिन ऐसी अमूढ़ दृष्टि प्राप्त करना बहुत कठिन है। जिसने जो बताया वो मान लिया, अपना विवेक कहीं भी लगाने का भाव अपने मन में आते ही नहीं है। जबकि जैन दर्शन में पहली विशेषता है कि जो भी करेंगे विवेक पूर्वक करेंगे। भावना तो बहुत अच्छी है, क्रिया भी बहुत अच्छी है, लेकिन विवेक शून्य भावना और विवेक शून्य क्रिया जरा भी फल नहीं देती। अमूर दृष्टि लिखा है, मूर्ता नहीं होनी चाहिए, मूर्खता नहीं होनी चाहिए, अविवेक नहीं होना चाहिए। विवेक पूर्ण तत्व के अपन छेडाला में पढ़ते ना, तो तत्व अतत्व पिछाने, क्या वास्तविक तत्व है और क्या तत्व नहीं है, जिसको कि हमने अपने कल्याण के लिए प्रयोजनभूत तत्व मान लिया है, वो हमारा भ्रम है, हमारी अज्ञानता है। हमें वास्तविक तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस तरह की अगर अपनी दृष्टि है तब तो अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे, वरना अगर यही दृष्टि है अपनी कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमको बहुत भौतिक सुख चाहिए, तो भैया फिर अपनी दृष्टि निर्मल नहीं हो पाएगी, अपना जीवन भी बहुत ऊंचा नहीं बन पाएगा। विभिन्न प्रकार की मान्यताओं के बीच सच्चाई क्या है ये खोजने के लिए एक अकेला होना पड़ेगा, अपना स्वयं का विवेक जागृत करना पड़ेगा, भीड़ चाल छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि भीड़ के अंदर विशेषता कहो, कमजोरी कहो, कमजोरी ही मानना पड़ेगी भीड़ चाल की। भीड़ चाल क्या कहलाती मालूम आपको? एक बार एक गुरुजी थे तो वो स्कूल में पढ़ा रहे थे बच्चों को। उसमें से एक बार उन्होंने बच्चों से पूछा कि एक बाड़े में 10 भेड़े हैं, उनमें से एक भेड़ निकल गई तो बाड़े में कितनी बचेंगी? सीधा सीधा सा गुणा भाग का सवाल, घटाने का सवाल था। 10 में से एक गया, कितने बचे, ये बताना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने पूछा इस तरह से कि अगर एक बाड़े में 10 भेड़े हैं, उसमें से एक निकल गई तो कितनी बची? तो जिस बच्चे से पूछा, वो तो उसके घर में बहुत सारी भेड़े थी, वो तो भेड़ चराता ही था, तो उसने खड़े होकर के कहा कि एक भी नहीं बची। अरे साल भर हो गो गणित पढ़ाऊत पढ़ाऊत, 10 में से एक गए, एक नहीं बचो, अभी तक तुम जो ही गणित सीखे। उससे फिर पूछा कि फिर से बेटे तुम गड़बड़ कर रहे हो, 10 भेड़े हैं बाड़े में, उसमें से एक निकल गई, कितनी बची? उसने कहा गुरुजी गणित वणित की तो आप जानो, भेड़ों की चाल हम जानते, अगर एक निकल गई तो सबरी दसई की दस निकल जाए पीछे पीछे, ये कहलाती भेड़ चाल। आए समझ में? तो ऐसे अपने जीवन में भी अविवेक की वजह से देखा देखी करने का अपने अंदर भी भाव उत्पन्न हो जाता। एक ने किया तो सब लोग उसको फॉलो करेंगे, सही है कि गलत है? सही है तो फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत को भी देखा देखी अनुसरण करना ये ठीक नहीं है। ना गलत का मन से ही मन ही मन प्रशंसा करना, न वाणी से उसको अच्छा कहना, न शरीर से कोई इशारा करके उसका समर्थन करना। का पते पति दुखा नाम, ऐसा मार्ग जिस पर चल करके अपना जीवन नष्ट होता है या अपना जीवन पतित होता है वो कापत है, जिसमें कि अपने जीवन में अपन कषाय और अज्ञानता से ग्रसित होकर के अपना पतन कर लेते हैं। ऐसे रास्ते के बारे में कापथे पथी, उस पर चलने वाले लोगों के मान के लिए भी, मार्ग के प्रति भी और मार्गी के प्रति भी, कापथस्थे सम्मति, वह मार्ग अच्छा है ऐसा मन ही मन उसके लिए भाव प्रशंसा का नहीं रखना। अपन से तो ठीक है ऐसा नहीं, अगर खोटा मार्ग है तो उस मार्ग की मन में भी प्रशंसा का भाव नहीं आना चाहिए। असंप्रक्ति रणोत्कीर्ति, और ना ही चार लोगों के बीच में बैठ करके उसके गुणगान करेंगे वचनों के द्वारा, और ना ही शरीर के द्वारा कोई एक्शन करके और उसको साधुवाद देने के लिए अपने शरीर से कोई प्रतिक्रिया करेंगे। मन वचन काय तीनों के द्वारा खोटे मार्ग की न प्रशंसा करना वाणी से, न मन से, न शरीर से, तब कहलाएगा कि हाँ हमारे भीतर विवेक जागृत हो गया है। लेकिन हमारे भीतर ऐसा विवेक बहुत मुश्किल से हजारों में किसी एक व्यक्ति के भीतर जागृत होता है, ये आचार्य भगवंतों का कथन है। अपन को उन हजारों में से एक में अपना नाम लिखवाना चाहिए कि हमारे भीतर भी ऐसी दृष्टि, ऐसी विवेकपूर्ण दृष्टि, दृष्टि तो सबके पास है लेकिन विवेकपूर्ण दृष्टि हो, जिसमें कि मैं सही क्या है, गलत क्या है, किसमें मेरा भला है, किसमें मेरा बुरा है, किसमें हित और अहित है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इदम करणीयम, इदम आचरणीयम, इदम ना आचरणीयम, यह मेरे योग करने के लिए है, ये मेरे करने योग्य नहीं है। इस तरह का भाव किसी के कहने से नहीं कि मैंने कह दिया कि ये नहीं करो या ये करो, ऐसा नहीं। बाबा वाक प्रमाण नहीं है यहां पर, यहां पर अपने विवेक से पहले उसको देखेंगे कि हां वास्तव में जैसा कहा गया है वैसा ही है, शास्त्र में ठीक ही ऐसा लिखा हुआ है, मैं भगवान के वाणी पर श्रद्धा रखता हूं तो भगवान के कहे अनुसार ही मैं अपना विवेक जागृत करके क्रिया करूंगा या कि उस रास्ते पर चलूंगा। इस तरह का विवेक अपने भीतर उत्पन्न होना चाहिए। रेवती रानी के बारे में घटना आती है कि देखो उनके अंदर कितना विवेक पूर्ण दृष्टि थी। एक देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आया था और उसने विभिन्न प्रकार के इंद्रजाल के द्वारा उनको भ्रमित करने की कोशिश की कि चलो आज तो ये आया है, आज तो ये खेल आया है, ये भगवान आए हुए हैं। इस तरह से रागी द्वेषी को ही वीतरागी के समान सम्मान देना ये अविवेक है। अपमान किसी का नहीं करना, आदर करना, लेकिन ठीक वीतरागी में जैसी पूजता है वैसी ही पूजता रागी में भी मानना, ये तो अविवेक ही है। अपने भीतर झांक के देखें कि मेरे भीतर रागी और वीतरागी में अंतर कुछ है या नहीं है, या कि मैं सबको एक समान ही सम्मान का भाव रखता हूं। अगर इस तरह का अविवेक अपने भीतर है तो उसको अपने भीतर संभालने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि रेवती रानी से जब बहुत प्रकार से राग से युक्त देवी देवताओं की चर्चा की गई कि उनके यहां चलो वहां देख लो ये आए हुए हैं, फलाने आए हुए हैं दुनिया भर के, लेकिन नहीं गई रेवती रानी। इतना विवेक था उनके भीतर, ऐसे नहीं कि वो फलानो खेलाओ सपन देखे आवे, हाँ क्या आवश्यकता है, सिर्फ देखने के लिए जा रहे हम, कौन रिस्पेक्ट के लिए जा रहे हैं, हम तो कश्मीर घूम भी जा रहे हैं। जाएंगे शिखर जी की वंदना करने, लेकिन चलो थोड़े कलकत्ता और घूम आए, तो शिखर जी गए थे कि कलकत्ता घूमबे गए थे कि वंदना करने गए थे। अकारी से निवृत्त होना तीर्थ यात्रा कहलाती, पांच पापों से रहित होकर के ही वो की जाएगी, लेकिन अपन उस तीर्थ यात्रा के साथ साथ और दूसरे काम भी अगर करते हैं तो ये विवेक कहलाएगा अपना। चलो थैला संगे ले लो, मंदिर हुआ है उतई से जब लौटन लगे सो साग सब्जी खरीद लिया है, ठीक है क्या? आप बताइए, आप तीन लोक के नाथ के दर्शन करने गए थे या अपने काम निपटाने गए थे? तीन लोक के नाथ के दर्शन करना भी एक काम में शामिल है क्या? जो आपने एक काम की तरह उसे भी और कामों जैसा ही निपटाने की कोशिश की कि चलो मंदिर भी उतई से वहां है उतई से साग सब्जी खरीद लिया है, वैसे मुख्य रूप से साग सब्जी खरीदना थी, मंदिर भी जो पड़ा थे सुचनक दर्शन भी करे आए उतई के, तो भैया जी विवेक कहलाएगा? आप स्वयं निर्णय करो। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, अपन स्वयं देखें कि ऐसा करके हम विवेक पूर्वक अपनी श्रद्धा को मजबूत कर रहे हैं या कि अविवेक पूर्वक अपनी श्रद्धा को और मलिन कर रहे हैं। लेकिन अपने साथ संस्कार ही ऐसे हैं अविवेक के, उसी को तो ठीक करना है। अपने भीतर दूसरे के ठीक नहीं करना है अविवेक को, अपने अविवेक को, जहां जहां जिन क्रियाओं में मैं अविवेक रखता हूं, मूर्ता रखता हूं, वहां से मुझे हटा लेना है, विवेक पूर्वक अपना आचरण करना है, अपने सारे कार्य यहां तक कि धार्मिक क्रियाएं भी विवेक पूर्वक ही करना है। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रख करके। रेवती रानी को आखिरी में जब बिल्कुल कुछ नहीं ले जाने के लिए मौका मिला तो उसने कहा कि तीर्थंकर का समूह शरण आया है, अब तो चले रेवती रानी देख भी खिलाने, अभी तक तो सबको मना कर दिया, अब नहीं मना कर पाएंगी। सो जैसे ही उस देव ने यह कहा कि तीर्थंकर का समूह शरण आया है रेवती रानी, आप भी दर्शन करने के लिए तीर्थंकर के चलिए, तो उन्होंने कहा कि चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 हो चुके, ये 25 में कहां से आ गए, मैं नहीं जाऊं, ऐसा कह दिया और नहीं गई। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी में लिखा हुआ है कि 24 तीर्थंकर होते हैं और आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हो चुके हैं, मोक्ष जा चुके हैं, और इसके बाद इस चौथे काल में और तीर्थंकर कहां से आएंगे, ये तो सब इंद्रजाल है, भ्रम है, अविवेक है। जैसे ही रेवती रानी ने इनकार किया, देव ने अपनी विक्रिया समेट करके ओरिजिनल रूप में आकर के प्रशंसा की कि आप सम्यक दृष्टि हैं और विवेक आपके भीतर है, ऐसे सम्यक दृष्टि हैं, अमूर्त दृष्टि से संपन्न सम्यक दृष्टि, आप इस गुणवत्ता से युक्त हैं। दृष्टि तो बहुत लोगों की अच्छी हो जाती है लेकिन उसमें विवेक हो ये बहुत थोड़े से लोगों में हो पाता। 8 अंगों से युक्त अपनी जो दृष्टि की निर्मलता है वो हासिल करने के लिए अपन प्रयास करें कि धीरे धीरे मेरे भीतर भी दृष्टि की संपन्नता के साथ साथ ऐसे गुण आते चले जाएं, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए अपन लोग आगे आने वाले समयों में। और देखें, सब क्रियाओं को तो मैं बता नहीं पाऊंगा, देखें अपन जो करते हैं, मंदिर क्यों आते हैं, परंपरा है इसलिए आते नहीं, मंदिर आकर के मैं अपने भगवान के दर्शन करके अपने स्वरूप का ही दर्शन करूंगा, जैसे अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए मुझे मंदिर जाना जरूरी है और सैकड़ों काम छोड़ करके मैं मंदिर जाऊंगा, अगर यह भाव है मंदिर आने के पीछे तो आपका विवेक है, और अगर अन्य कोई भाव है तो उसे सुधारना चाहिए। ऐसे ही चाहे कितनी भी धार्मिक क्रियाएं हों, पंचकर्णायक इत्यादि हों, विधान इत्यादि हो, इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है, अपने आत्म कल्याण का। एक भी कपड़े का टुकड़ा नहीं है शरीर के ऊपर, लेकिन फूल मालाओं से लदे हुए, कोई बाजू में रस्सी में पिस्टल लटकाए है, कोई कहीं पर मोबाइल लटकाए हुए है, शराब पी रहे हैं रात में, टेलीविजन देख रहे हैं, जिनके की 75-75 करोड़ रुपए बैंक में FD है, अब बताइए आप इसको वीतरागी साधु मानेंगे, इसके द्वारा अपना आत्म कल्याण के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए क्या इनके चरणों में बैठ करके उपदेश लेंगे, इनसे तो संसारी सत्ता है, इनसे मोक्ष मार्ग नहीं सदेगा। तो अकेले कपड़े नहीं पहनने से कोई मोक्ष मार्गी हो जाएगा, ऐसा धोखे में नहीं रहना। मैं तो बिल्कुल धोखे ही नहीं, अगर मेरा 6ठा 7वां गुण स्थान है तो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज मेरा नाम है, वरना 0 कुछ नहीं है नाम। अकेले कंचन और कामनी के त्याग करने से कोई मोक्ष मार्गी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अपने भीतर की कषाएं, अपने भीतर का अज्ञान, अपने भीतर की आसक्ति ये दूर करना चाहिए। इतना विवेक शावक में और साधु में सबके भीतर जब होगा तब जाकर के अमूर्त दृष्टि से संपन्न सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता। सुनने में कहने में तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा बड़ा कठोर है, लेकिन क्या करें, दृष्टि की निर्मलता ऐसी ही कठोरता से प्राप्त होगी। है तो बहुत सरल, लेकिन उसके लिए ऐसा ही परीक्षा करके और फिर उसके बाद अपनी स्वयं परीक्षा करना, कसौटी भगवान की दी हुई है कि मैं अपने विवेक की परीक्षा कैसे करूं, दूसरे की नहीं करना परीक्षा, इस कसौटी पर अपनी परीक्षा करें कि मैं पहले की अपेक्षा कितना अज्ञान मेरा हट गया है, कितनी कषाय मेरी हटी है, कितना मेरे जीवन में अपने कल्याण करने का भाव उत्पन्न हुआ है इन क्रियाओं को करते हुए। वरना इन क्रियाओं को तो बहुत लोग कर लेते हैं, पंचाग्नि तप तप लेते हैं, लेकिन अकेले तप तपने से और कल्याण नहीं होगा, पहले विवेक होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। ये उपनिषद में लिखा हुआ है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक बाहरी क्रियाएं कर लेने अकेले से कोई दृष्टि से संपन्न होकर अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकता। इसलिए कोशिश करिएगा कि अपने भीतर आत्मज्ञान उत्पन्न हो, विवेक जागृत हो और अपनी सारी क्रियाएं जो करते हैं वो सब क्रियाएं समीचीन हो जाएं। क्रिया का निषेध नहीं कर रहा हूं, क्रिया तो अपन करते रहेंगे लेकिन विवेकपूर्ण क्रिया करेंगे जिससे कि मेरा अपना ये क्रिया कल्याण में सहायक बन जाए। इसी भावना के साथ कि अपन सबके भीतर विवेक जागे और अपन अपना कल्याण कर सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता वो
हो, अर्ध निशा का सन्नाटा मन में वन चारे चरते हूँ,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तपशैल नदी तट पर तर तन वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर जाना हरते वाणी मानो झड़ती हो फल झड़िया,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादाने क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधिया,
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
उदक चंदन तंदुल पुष्प कश्चर सुदीप सुधूप प्रलार्धक,
धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिनाथ मगम।
ओम रेम श्री आचार्य विद्यासागर महाराज संगस्त मुनिश्री छा सागर महाराज मुनिश्री भव सागर महाराज चरणों में अर्घ्य प्रणत स्वाहा।
मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो मानु सेवा खानी है,
छह द्रव्य जान वेखो बंद विधि भान वेखो स्वपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है,
अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काहू न सताए वेखो भव्य उरानी है,
जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है,
जावाणी के जानते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो, हे दिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख जैन।